नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता जारी है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है। भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। ये आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीट जीतकर टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बहुमत के लिए 118 सीट की जरूरत है। पार्टी कांग्रेस सहित कई अन्य दलों से बातचीत कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गिरीश चोडनकर ने कहा है कि बैठक के बाद टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया जाएगा। उधर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की लीमा रोज ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीके को समर्थन देने के बारे में बातचीत कर रही है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राजभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता खुल गया है। इससे पहले असम के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग गोयल ने राज्यपाल को नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों की आधिकारिक सूची सौंपी। हाल ही में सम्पन्न विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 126 में से 102 सीट जीतकर निर्णायक जनादेश प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देशभर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार कराने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तान द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई है। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वर्ष नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी एमी एक्टिन से होगा। अगर वे चुने जाते हैं तो वे लुइसियाना में बॉबी जिंदल और दक्षिण कैरोलिना में निकी हेली के बाद अमेरिका में तीसरे भारतीय गवर्नर बन सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।